समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मौसम के मिजाज ने आजकल हम सबका मिजाज और हाल चाल पूछ रखा है। सर्दी का भरपूर लुत्फ तो हम सब दिल खोलकर उठा ही रहे हैं, मगर जिधर देखे उधर ही इसी सर्दी की मार से बीमार पड़ने वालों की भी तादाद दिन पर दिन बढ़ती दिख रही है। तो बस एक ही सलाह है कि इस खूबसूरत मौसम का मजा लीजिए, मगर जरा सी सावधानी बरतते हुए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत साकार होते देर नहीं लगेगी। आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। मैं हूं नईम अख्तर और साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। कैसी हैं सरबजीत?
वेरी वेल नईम, थैंक यू एंड एन ऑसम वेलकम टू ऑल आवर लवली लिसनर्स ऑन दिस कोल्ड लवली 7th जनवरी मॉर्निंग। यस लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क, एंड एज एवरी मॉर्निंग वी आर हियर विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट 30 आवर्स वी हैव अ जैम पैक्ड यू नो सेशन ऑफ म्यूजिक, ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो नईम, लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस।
जी बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विकसित भारत पुल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सभी अनुरोधों के मामलों के में कार्रवाई को सरल बनाएगा। इसमें इंटरपोल की ओर से जारी रेड और अन्य रंगों के कोड वाले नोटिस से संबंधित मामले शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सभी के लिए सुरक्षित भारत के निर्माण के मोदी सरकार के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जांच एजेंसियों की वैश्विक पहुंच बढ़ेगी और उनको नई धार मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। श्री शाह 35 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है।
World Health Organization's former chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan, has said there is nothing to worry about the human metapneumovirus, HMPV, even as two more cases have been detected in India. In a social media post, she noted that the virus is not new and causes only mild infections. She also listed out precautionary measures like washing hands, while warning people to not jump at the detection of every pathogen. She further noted that as per ICMR, HMPV accounts for about 3% of respiratory pathogens detected in the laboratory network. Influenza-like illness, ILI, and severe acute respiratory infections, SARI, cases. HMPV was first discovered in 2001 and is part of the Pneumoviridae family along with the RSV. The symptoms commonly associated with HMPV include cough, fever, nasal congestion, and shortness of breath.
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार दिल्ली में 1,55,24,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इनमें 83 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 71 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले 2 महीनों में 18 से 19 वर्ष की आयु के 52,000 से अधिक मतदाता जुड़े हैं। कार्यालय ने बताया कि पिछले 20 दिन में नई नामांकन के लिए 5 लाख से अधिक फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूठे और छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज जमा करने के आरोप में 24 लोगों के खिलाफ 8 FIR दर्ज की गई हैं।
Union Education Minister Dharmendra Pradhan released the draft UGC Regulations 2025 in New Delhi. The draft is related to the minimum qualifications for appointment and promotion of teachers and academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education. The draft regulations will give flexibility to universities in appointing and promoting teachers and academic staff in their institutions. Speaking on the occasion, Mr. Pradhan said that these draft reforms and guidelines will infuse innovation, inclusivity, flexibility and dynamism in every aspect of higher education. He mentioned that the draft regulations have been placed in the public domain for feedback, suggestions and consultations.
महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने जानकारी हासिल की है। ये वेबसाइट जानकारी के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरी है। दुनिया भर के लाखों लोग इस पर विजिट कर रहे हैं। वेबसाइट पर 4 जनवरी तक विश्व के 6,206 शहरों की विजिट दर्ज हुई। आगंतुकों ने न सिर्फ वेबसाइट का उपयोग किया है बल्कि उपलब्ध सामग्री की खोज में भी काफी समय बिताया है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं।
And Naeem, you know, we've been very aggressively talking about Vikasit Bharat and the role of the youth in this development of the country. So the 31st National Children's Science Congress has concluded in Bhopal. The four-day event provided an opportunity to thousands of students to showcase their talent, focusing on science and innovation on the theme Understanding Ecosystem for Health and Well-being. Director General of Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Dr. Anil Kothari said, the event is a wonderful platform for child scientists where their imagination and innovation get a new direction and name. In fact, if the innovation of the youth is, you know, utilized towards making the ecosystem a better place to live in, we can do wonders in the country.
No doubt.
And moving on to the next news item in Nepal, Sagarmatha National Park, SNP, has eased helicopter flight restrictions in the Everest region following disputes among local authorities and the Airline Operations Association of Nepal. Earlier, the SNP had directed a halt to commercial helicopter flights starting January the 1st, citing environmental concerns, noise pollution, and the need to regulate business operations. Helicopter services in the Everest region are vital for tourism, construction and emergency rescues. Sagarmatha National Park has been recognized as a UNESCO Natural World Heritage Site since 1979. The park attracts thousands of tourists annually and contributes significantly to local area development and the national economy. And moving on to the world of sports now. In Hockey India League, Surma Hockey Club clinched a 3-1 victory over Delhi SG Pipers in penalty shootout. A report.
A penalty shootout victory against Delhi SG Pipers in Hockey India League at Birsa Munda Stadium in Rourkela on Monday.
तीसरी जीत मिली है सूरमा हॉकी क्लब को हॉकी इंडिया लीग में.
After a quiet first half, Thomas Domain at 43rd and Manjeet Singh at 45th minute scored to grant Delhi SG Pipers a 2-goal lead in the third quarter. However, birthday boy Hagmanpreet Singh at 48th and 57th minute formed the back of the net twice with his drag flicks to get Surma's on level terms in the last quarter. This forced penalty shootout out where Surmas took the lead with 3-1. Player of the match Harmanpreet Singh said,
"Aaj special ho gaya mera birthday aur I think puri team ne decide kiya tha ki wo apna 100% denge aur I think wahi baat hui hai till the last whistle humne fight kiye aur humne match jeeta shootout pe."
Today match between Vedanta Kalinga Lancers versus Karachi Gar Bengal Tigers will be played at 8:15 PM. You can listen to daily report on Hockey India League on Akashwani. This is Pratishtha Jain for Akashwani News.
और अब सरबजीत प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें अपने श्रोताओं को सुना देते हैं.
जी नहीं, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई.
जी,
अ मीटिंग चेयर्ड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर Alex Paul Menon reviewed 16 proposals, resulting in approved investments worth 137.58 crore rupees, generating 2,110 jobs. The development commissioner emphasized the importance of efficient land use within SEZs and encouraged units to consider companies as developer status. The move aims to boost infrastructure development and foster collaboration with stakeholders to attract high-value investments that support global value chain integration. The approvals in this meeting held yesterday is to further strengthen the contribution of SEZs to regional economic development and global trade competitiveness. And let our listeners know something about Delhi now.
Ji, Delhi se mere paas do khas khabrein hain aur wo dono hi khabrein aap le chuki hain. Unmein se ek khabar jo hai ye hai human meta pneumo virus yani ke HMPV ke bare mein, lekin main Delhi ke bare mein baat karne wali hu. Karnataka mein human meta pneumo virus HMPV ke do mamle samne aane ke baad Delhi ke swasthya mantri Saurabh Bhardwaj ne swasthya aur parivar कल्याण विभाग को राजधानी में पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार सभी अस्पतालों को श्वास की बीमारी में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए. श्री भारद्वाज ने स्वास्थ्य सचिव से प्रतिदिन 3 अस्पतालों का निरीक्षण करने और मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं. और दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कल ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV और अन्य श्वसन वायरस से संबंधित संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए परामर्श जारी किए हैं. अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वो एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामले तुरंत दर्ज करें. संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सार्वभौमिक सावधानियों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है. अस्पतालों को ऑक्सीजन के साथ साथ पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स और खांसी की दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों के वृद्धि के बाद ये परामर्श जारी किए गए हैं.
Yes. Name, is there more news from Delhi?
जी नहीं.
All right. So indeed, you know, hearing this news from Delhi, I must say that surely it's not time to worry, but yes, we have to take precautionary measures.
Actually.
And we have to take good care of our health.
बिल्कुल.
Moving on further, let's get the news from Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has issued directions to the Revenue Department to issue land titles to all landowners within February 10th. He was speaking to media persons after a meeting with Stamp and Registration Department officials in Bengaluru. He said that the same plots are sold to several persons as the title deeds are not clear. In the Gram Panchayat level, 90 lakh properties are estimated to have no proper land records and title deeds. The Chief Minister issued directions that Khatka should be issued only when there is a clear land record. He also asked the Revenue Department to update land records in their database. The Revenue Department officials informed that Chief Minister that they have collected 16,993 crore rupees revenue as taxes this year, which is 17% more than the previous year. And what's the buzz from Mumbai today?
मुंबई में वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि देखने के बाद बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC ने निर्माण गतिविधियों के संबंध में सख्त कदम उठाए. इन उपायों के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण में आया, जिससे बायकुला और बोरीवली पूर्व जैसे क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया गया है. नगर आयुक्त और प्रशासक श्री भूषण गगनानी ने ये जानकारी उन्होंने कहा कि फिर भी नगर निगम प्रशासन मुंबई में वायु गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा. बीएमसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण परियोजनाओं और डेवलपर्स को सभी आवश्यक कार्रवाई का पालन करना होगा. अगर कोई उल्लंघनकर्ता पाया जाता है और बार बार चेतावनी के बाद भी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता है तो ऐसी विशिष्ट निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक और खबर है मेरे पास, देवगढ़ तालुका में केसर आमों की पहली क्रेट नवी मुंबई में मुंबई कृषि उपज बाजार समिति परिसर में लगे फल बाजार में पहुंच चुकी है। देवगढ़ तालुका में वाघोटन गांव के किसान इस सीजन की पहली क्रेट जिसमें 5 दर्जन केसर आम हैं, उन्होंने मुंबई एपीएमसी को भेजी है और ये इस क्रेट की कीमत 10,000 रूपये से 15,000 रूपये के बीच मिलने की उम्मीद है। तो ये एक बड़ी खबर है कि इस मौसम में आमों की और खासतौर पर केसर आमों की एक नई क्रेट मुंबई में आ गई है।
जी बहुत खूब। मूविंग ऑन टू द न्यूज फ्रॉम हैदराबाद, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ सी सुदर्शन रेड्डी रिलीज फाइनल ड्राफ्ट इलेक्टर्स लिस्ट लास्ट इवनिंग फॉर ऑल 119 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज। द स्टेट हैज ओवर 1,68,67,000 वुमेन इलेक्टर्स वाइल ओवर 1,66,41,000 मेल इलेक्टर्स एंड 2,800 ट्रांसजेंडर्स। द इलेक्शन अथॉरिटीज अपडेटेड द इलेक्टर्स लिस्ट अप टू दिस मंथ। द अथॉरिटीज ऑल्सो रिवील दैट द स्टेट हैज ओवर 5,45,000 यंग इलेक्टर्स बिटवीन 18 to 19 years and over 2,22,000 senior electors of over 85 years of age. The CEO further informed that over 3,500 overseas NRI electors have enrolled. Polling station-wise, final electoral rolls of all assembly constituencies are available on ceotelangana.nic.in. And what's the news from Kolkata, Naeem?
जी, मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी मंगलवार को यानी आज पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला के गंगासागर से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगी। वो कल यानी सोमवार को गंगासागर आई और इस सप्ताह शुरू होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव मनोज पंत, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गंगासागर में मौजूद हैं।
Well, listeners, so much so from the metros, but we'd like to take you back into some action from the world of squash, handball, football and table tennis. Here's our report.
In squash, India's Anahat Singh has clinched the under-17 girls singles title at the British Junior Open in Birmingham, England. The 16-year-old top seed Indian defeated Malika El Karaksi of Egypt 3-2 in the summit clash last evening. Anahat came from behind twice to secure the win. The victory marks Anahat's third British Junior Open title. Anahat had won 9 PSA Challenger titles last year, more than any other woman in the world. In the Indian Super League football, Mumbai City FC registered a 3-2 victory over East Bengal FC in Kolkata last night. FC Goa will take on Hyderabad FC at the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa tomorrow evening. In handball, the Indian youth under-18 team has advanced to the final of the IHF Asia Trophy in Lucknow. India defeated Kazakhstan 31-27 in the second semi-final of the youth section yesterday. India will now face Uzbekistan in the final today. In table tennis, the WTT Star Contender 2025 has begun in Doha, Qatar yesterday. In men's singles qualifying round 1, Indian paddlers Anirban Ghosh, Snehit Suravajjula and Manush Shah have registered victories. With reports from Chirag Jha, विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
और अब कुछ
मौसम के बारे में बात करें। नहीं,
वही कह रही थी कि मौसम से शुरुआत हुई थी तो मौसम की ही जिक्र कर लेते हैं। और महानगरों के मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
Well, Chennai is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum may go up to 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperatures was 15 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperatures will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब आज की यानी 7 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं.
यस नईम, टू बिगिन दिस सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, 7th जनवरी 1610 इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली मेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ जुपिटर्स फोर मून्स.
1789 में अमरीकी जनता ने जॉर्ज वॉशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया. 1859 में सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई.
7 जनवरी 1927 द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक फोन कॉल वॉज मेड.
1929 में मदर टेरेसा ने कोलकाता पहुंचकर गरीब और बीमार लोगों के लिए चिकित्सा काम शुरू किए थे.
1968 ऑन दिस डे द अमेरिकन अनक्रूड स्पेस प्रोब सर्वियर 7 वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सर्फेस. एंड 1985 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ऑन दिस डे लॉन्च्ड जापान्स फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट स्पेस प्रोब साकीगाका.
और आज ही के दिन 1987 में कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए थे.
एंड 2011 ऑन दिस ईयर इन ऑन दिस डे इन फैक्ट द बेस्ट पिक्चर ऑस्कर विनिंग फिल्म द किंग्स स्पीच स्टारिंग कॉलिन फर्थ जेफरी रश एंड हेलेना बोनहम कार्टर वॉज रिलीज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम.
और अब हम बात कर लेते हैं उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती है या फिर जन्मदिन है. चिदम्बरम सुब्रमण्यम का नाम मैं सबसे पहले ले रही हूं जिनकी आज पुण्यतिथि है. भारत में हरित क्रांति के पिता के नाम से उनको याद किया जाता है. जब भारत को आजादी प्राप्त हुई उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बहुत शोचनीय थी. कई स्थानों पर अकाल पड़े. बंगाल बिहार और उड़ीसा में अनेक लोग भुखमरी का शिकार हुए और काल का ग्रास बन गए. तब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया और उन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की. उनकी बेहतर कृषि नीतियों के कारण ही 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ. सी सुब्रमण्यम की नीतियों और कुशल प्रयासों से ही आज देश खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है. और एक बड़ा नाम और है ताराचेरियन का. इनकी भी आज पुण्यतिथि है. ये भारत की एक समाज सेविका थी. मद्रास की पहली महिला थी जो मेयर बनी. मेयर के रूप में उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में सरलता और सानुकूलता का समावेश कराया और उनके स्वास्थ्य के लिए दोपहर में पोषक तत्वों से पूर्ण स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई, जिससे फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ. स्वास्थ्य में सुधार के में बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ने लगी, जिसको देखकर आसपास के सभी नागरिक अपने बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए उत्सुक होने लगे. ताराचेरियन के सेवा भाव को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया.
जी नेम, वी ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू ब्रैड वेनेबल. ही वाज एन एक्टर नोन फॉर पोकेमॉन, डिटेक्टिव पिकाचू एंड द बॉय एंड द बीस्ट. ब्रैड सेड गुड बाय टू दिस वर्ल्ड ऑन 7 जनवरी 2021 इन लॉस एंजलिस. एंड नेम, वी आर ऑल्सो पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट एक्टर Irfan Khan. Today is his birth anniversary.
Ji.
Irfan Khan worked in Indian cinema as well as British and American films. Widely regarded as one of the finest actors in world cinema, Khan's career spanned over 30 years and earned him numerous accolades, including a National Film Award, an Asian Film Award, and 6 Filmfare Awards. The music that you hear in the background is, of course, from the awesome film Slumdog Millionaire. And of course, listeners, Irfan Khan's dialogues have always been heavy and very, very meaningful. Let's hear this dialogue.
लकीरें बहुत अजीब होती हैं. खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं.
लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में. उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में. कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में. बताने की जरूरत नहीं, बात कर रहे हैं हम बहादुर शाह जफर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल 1837 से 57 तक रहा और जब 1857 में देश में आजादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बस इतना बताना यहां काफी है कि उन्हें एक बार फिर से दिल्ली पर कब्जा करके अंग्रेज सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया था और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। वो न सिर्फ भारत के सम्राट रहे बल्कि एक मशहूर शायर भी रहे। उनकी बहुत सारी मशहूर कविताएं हैं, बहुत सारी मशहूर गजलें हैं, जिनमें से एक गजल हम आपको सुना रहे हैं।
न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार न किसी की आंख।
Yes, indeed, name very well said, beautifully sung too.
जी, चंद्रशेखर वेंकट रामन, इनकी आज जयंती है। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई वो हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन। रामन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को इन्हीं की वजह से हुई। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 28 फरवरी का दिन इस रूप में मनाया जाता है और 1933 में डॉक्टर रामन को बेंगलुरु में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के संचालन का भार सौंपा गया। उन्होंने 1948 तक वहां काम किया। बाद में डॉक्टर रामन ने बेंगलुरु में अपने लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने बेंगलुरु में एक उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना कहेंगे कि अपने संस्थान में जीवन के अंतिम दिनों तक ये शोध कार्य करते रहे। एक और नाम है जिनकी आज जयंती है, वो है लक्ष्मी छाया। एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और शिक्षिका थीं, जो हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट चरित्र भूमिकाओं और प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। बाल कलाकार के रूप में कई भूमिकाओं के बाद लक्ष्मी छाया ने जान पहचानों में एक नकाबपोश नर्तकी के रूप में अपनी भूमिका के लिए पहचान बनाई और फिर इसके बाद एक के बाद एक फिल्में आईं, जिनमें से मेरा गांव मेरा देश फिल्म का जो आप गीत सुन रहे हैं इसमें लक्ष्मी छाया आपको स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। आज जन्मदिन है फिल्म दुनिया में अपनी अलग ही अदाकारी के लिए मशहूर दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए के सबसे ज्यादा अनुभवी अभिनेता की उपाधि से सम्मानित कमल हासन का।
नईम, आज फिर आप बहुत सारी रिसर्च करके आई हैं, लक्ष्मी छाया, कमल हासन एंड व्हाट नॉट।
मेरे पास सुप्रिया पाठक का नाम भी है, आज उनका भी जन्मदिन है। ये एक ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने टेलीविजन, फिल्मों और थिएटर सब जगह काम किया है।
Listeners, we are also paying tributes today to the great French composer and pianist Francis-Jean Marshall Poulenc. His compositions include songs, solo piano works, chamber music, choral pieces, operas and ballets.
आज आज ही जन्मदिन है रीना रॉय का, हिंदी फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री। 1972 से 85 तक कई फिल्मों में उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उस युग की एक सबसे मशहूर अभिनेत्री रही रीना रॉय। अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में भी वो एक रही और उन्हें बहुत सारे अवार्ड से जो नवाजा गया है, और उनका यहाँ पे नाम लेना भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ उनके गीत सुनना जरूर संभव है।
हाथों से सावर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी। तुझको आँखों में भर के मर गई मैं, तुझ पे मर के।
और वक्त हो गया है कि अब अपने श्रोताओं से इजाजत ले ली जाए, तो अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे ही समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।